पिछले अध्याय में आपने देखा कि रूही रुद्र से भाग जाती है। इस अध्याय में रुद्र रूही को ढूंढता है और गुस्से में उसे सजा देने की बात करता है। रूही भाग जाती है और एक पार्क में समय बिताती है। फिर वो एक ऑटो लेती है, लेकिन उसे बेहोश कर दिया जाता है। दिशा को देवान शादी में रुकने के लिए कहता है और मिशा दुल्हन के रूप में तैयार होती है। नाउ नेक्स्ट चैप्टर 53। अब आगे सिंघानिया विला। मैम, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम आपका मेकअप इस तरह से करेंगे कि सर आपको देखते ही पलके झपकाना ही भूल जाएंगे। आप आज दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन लगेंगी। मेकअप आर्टिस्ट की बात सुनकर मिशा खुश हो जाती है। वहीं मेकअप आर्टिस्ट मिशा का फिर से मेकअप करना स्टार्ट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ धीरज जी के रूम में सुमन जल्दी जल्दी शादी के लिए तैयार हो रही थी, क्योंकि शादी के मुहूर्त में सिर्फ एक घंटा ही बचा हुआ था। तभी कमरे का गेट खोल धीरज आते हैं, जो पहले ही तैयार हो चुके थे, बस सुमन को लेने आए थे। लेकिन जैसे ही वे कमरे में अपने कदम रखते हैं और उनकी नज़र सुमन पर पड़ती है, तो सुमन को देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि सुमन ब्लू कलर की स्टाइलिश साड़ी, स्लीवलेस ब्लाउज, हल्के मेकअप और खुले बालों में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। वे धीरे धीरे अपने कदम सुमन की तरफ बढ़ा देते हैं। वे सुमन के पास पहुँच पीछे से उनकी कमर को पकड़ उन्हें अपने बाहों में भर उनके गले पर किस करने लगते हैं। वहीं सुमन, जो तैयार हो रही थी, किसी के इस तरह अचानक आकर अपनी कमर को पकड़ने और गले पर किस करने से डर जाती है, लेकिन जब उसकी नज़र शीशे पर से अपने पीछे खड़े धीरज पर पड़ती है तो वो एक चैन की सांस लेती है। लेकिन फिर धीरज पर गुस्सा करते हुए कहती हैं, आप ये क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। सुमन की बात सुनकर धीरज सुमन के कान पर किस करते हुए बोले, मैं क्या कर रहा हूँ, आज मेरी बीवी काफ़ी खूबसूरत लग रही है, इसलिए बस अपनी बीवी से थोड़ा प्यार कर रहा हूँ। इतना बोल वे फिर से सुमन के गले पर किस करने लगते हैं। वहीं सुमन धीरज को खुद से दूर करते हुए कहती हैं, अभी कुछ देर में शादी शुरू होने वाली है और मुझे अभी भी सारे इंतजाम देखने हैं, इसलिए आप मुझसे इस समय दूर रहिए, क्योंकि मेरे पास अभी इन सब के लिए टाइम नहीं है। इतना बोल वे वहां से जाने लगती हैं। वहीं धीरज सुमन की बात सुनकर अपने दांत पीस लेता है कि इस औरत की हिम्मत कैसे हुई उसे अपने आप से दूर करने की। इतना सोच धीरज गुस्से में सुमन का हाथ पकड़ उसे अपने करीब खींच उनकी कमर को पकड़ उनके खूबसूरत चेहरे को देख बोले, सुमन, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपने आप से दूर करने की, अब आपने गलती की है तो पनिशमेंट तो बनती है ना। धीरज की बात सुनकर सुमन अपना सर नामे हिला देती है, लेकिन धीरज उनकी एक नहीं सुनते और सुमन के होठों पर अपने होठ रख उन्हें किस करने लगते हैं। वे सुमन को काफी डीपली किस कर रहे थे, साथ ही साथ उन्हें सजा देने के लिए उनके होठों पर बाइट भी कर रहे थे, जिससे सुमन को थोड़ा दर्द हो रहा था। वहीं सुमन धीरज को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, मगर धीरज सुमन में इतने खो गए थे कि उन्हें कुछ होश ही नहीं था। इसी तरह किस करते करते जब धीरज का गुस्सा शांत हो जाता है तो वे सुमन को सॉफ्टली किस करने लगते हैं, जिसकी अब सुमन भी बहकने लगी थी। वहीं कोई और भी था जो इस नज़ारे को अपनी दो दो आंखों को फाड़े बेशर्मों की तरह उन्हें किस करता हुआ देख रहा था। ये कोई और नहीं, परी और अर्जुन थे, जो अपनी मॉम डैड को नीचे जाने के लिए बुलाने आए थे, मगर यहाँ का नज़ारा देख उनके खुद के होश उड़ गए थे। वहीं सुमन, जो धीरज के किस में यूं बहकने लगी थी, उनकी नज़र जैसे ही अपने बच्चों पर जाती है उन्हें काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगती है और वे धीरज को एक ही झटके में अपने से दूर कर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है। वहीं धीरज सुमन के यूं दूर होने पर कुछ बोलने ही वाले थे, तभी उनकी भी नज़र अपने शैतान बच्चों पर चली जाती है, जिसे देख वे सब कुछ समझ जाते हैं कि उनके बच्चों ने उन्हें किस करते हुए देख लिया है, इसलिए वे दोनों को गुस्से में देखने लगते हैं। वहीं परी और अर्जुन, जो बेशर्मों की तरह अब भी वहीं खड़े थे, जब उन्हें अपने पापा की गुस्से भरी नज़रें खुद पर महसूस होती है तो वे दोनों अपने पापा को देख अपने चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लिए बोले, पापा, हमने कुछ भी नहीं देखा, हमने नहीं देखा कि आप मम्मी को किस कर रहे थे, हम तो आप दोनों को नीचे बुलाने आए थे, क्योंकि शादी का मुहूर्त हो गया है, पर कोई बात नहीं डैड, आप अपना मॉम के साथ रोमांस कंटिन्यू रखिए, जब हो जाए तो आप लोग नीचे आ जाइएगा, हम चलते हैं। इतना बोल दोनों अपने दांत दिखाते हुए बिना धीरज की आगे की कोई बात सुने उस कमरे से भाग जाते हैं। वहीं धीरज उन्हें जाता देख चिल्लाते हुए बोले, बेशर्म बच्चों, आगे से मेरे कमरे में आने से पहले गेट नॉक करके आना, वरना मत आना। वहीं अर्जुन जी थोड़ी दूर पर जाकर रुक गया था, वे वहीं से कमरे से थोड़े पास आकर चिल्लाते हुए बोला, डैड, तब आपको भी रोमांस करने के पहले दरवाजे को बंद कर लेना चाहिए था, अगर आप इसी तरह खुलेआम मॉम के साथ रोमांस करेंगे तो मेरे साथ साथ कोई भी आकर देख सकता है। इतना बोल वे दौड़ते हुए वहां से भाग जाता है। वहीं धीरज अर्जुन की बात सुनकर अपने दांत पीस लेते हैं, उन्हें तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके बच्चे इतने ज्यादा बेशर्म निकलेंगे। वहीं सबसे जाने के बाद सुमन खुद को सही कर गुस्से में धीरज को देख बोली, आपकी वजह से अब मैं अपने बच्चों के सामने अपना चेहरा भी नहीं दिखा सकती, आप कुछ दिन तक मुझसे दूर रहिएगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना बोल वे नीचे चली जाती है। वहीं धीरज जी को सुमन की बात पर गुस्सा तो आता है, पर वे अभी कुछ नहीं बोलते और वे भी नीचे चले जाते हैं। वहीं नीचे सिंघानिया विला के गार्डन को आज काफी ज्यादा खूबसूरती से सजाया गया था। हर जगह अलग अलग देशों के मंगवाए गए काफी महंगे और यूनिक फूल, महंगी महंगी लाइटिंग और यूनिक झूमर, इसी तरह से बहुत सारी खूबसूरत डेकोरेटिंग की गई थी। इस गार्डन को इतनी खूबसूरती से सजाया गया था कि देखने वाले बस देखते ही रह जाएं। इस शादी को काफी सीक्रेट रखा गया था, इसलिए काफी कम और भरोसेमंद लोगों को ही बुलाया गया था, क्योंकि रुद्र सिंघानिया जितना बड़ा नाम था उसके दुश्मन भी उतने ही ज्यादा थे,
जो हर वक्त वार करने के लिए मौके की तलाश में रहते थे। इसलिए इस शादी में किसी मीडिया या बाकी लोगों को भी नहीं बुलाया गया था, सिर्फ घर वाले और कुछ खास रिश्तेदार ही थे। उसी गार्डन के बीचों बीच एक बड़ा सा मंडप बना हुआ था जो बहुत सारे फूलों से सजाया गया था। इस समय सभी लोग मंडप के पास मौजूद थे सिवाय दूल्हा दुल्हन और रूही के। तभी पंडित जी रणवीर जी की तरफ देखकर बोले, यजमान शादी का मुहूर्त हो गया है, आप दूल्हा और दुल्हन को बुला लीजिए। पंडित जी की बात सुनकर रणवीर जी सरहा में हिला रुद्र को फोन लगा देते हैं।
वहीं धनराज जी अपनी बहू पूनम को मिशा को लाने के लिए बोलते हैं, जिसे सुन पूनम सरहा में हिला मिशा को लेने के लिए दुल्हन की रूम की तरफ चली जाती है।